بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. بات چل رہی تھی محبت طبعی یا محبت عقلی، اور وہ ایک حدیث تھی جس کا مفہوم سنا رہے تھے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تم پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہ جائے، اس کی تفسیر تھی. اب بات آج یہ ہوگی کہ محبت طبعی صغرا و کبرا، صغرا اور کبرا. ہاں، صغرا اور کبرا. دیکھیں، ایک محبت طبعی وہ ہوتی ہے، محبت طبعی وہ ہوتی ہے جو کسی تصنّع اور تکلف کے بغیر، تصنّع اور تکلف یعنی بناوٹی کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر اور غور و فکر کے بغیر طبعاً انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، طبعاً انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے. جیسے بچے سے باپ کو محبت طبعی ہوتی ہے، اور باپ کو بچے سے محبت طبعی ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ صغرا اور کبرا نکال کر منطقی طور پر نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور ہر باپ کو اپنے بچے سے محبت کرنی چاہیے، لہذا مجھے اس سے محبت ہے؟ صغرا کبرا کے منطقی بحث ہے. خیر، تو فرمایا فلسفی بحث ہے کہ کیا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور ہر باپ کو اپنے بچے سے محبت کرنی چاہیے، لہذا مجھے اس سے محبت ہے. ایسا صغرا کبرا بتا کر نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. یہ محبت خالصتاً محبت طبعی ہے. دوسری محبت طبعی وہ ہوتی ہے، ایک محبت طبعی یہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے، اور دوسری محبت طبعی وہ ہوتی ہے جو محبت عقلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، محبت عقلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یعنی پہلے ذرا سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر جوں جوں وہ غور کرتا ہے تو اس غور کرنے کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کا ذکر ہے وہ محبت طبعیہ ہی ہے، البتہ اس تک پہنچنے کا راستہ محبت عقلیہ ہے. اب دیکھو، یعنی وہ ایک بتایا تھا نا شاہ صاحب کی توجیہ، فرمایا یہاں سے مراد محبت عقلی نہیں بلکہ محبت طبعی ہی ہے، تو اس کو سمجھا رہے ہیں. وہ کیسے؟ تو محبت طبعی کی دو قسمیں، ایک محبت طبعی وہ جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے، جیسے باپ کو بیٹے سے محبت، اور ایک وہ ہے جو انسان سوچے اور پھر محبت آئے، سوچے اور پھر محبت آئے، تو وہ محبت ہے، وہ بھی طبعی ہے. تو وہ عقلی، اسی کو عقلی کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ محبت طبعیہ ہی ہے، البتہ اس تک پہنچنے کا راستہ محبت عقلیہ ہے. وہ بھی محبت طبعی ہے، لیکن وہاں تک پہنچیں گے کب؟ وہ عقلی کے راستے سے، یعنی سوچ کر پہنچو گے تو بھی محبت طبعی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا. اس لیے اگر کسی کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعیہ پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے ایک ایک فرد پر کیا کیا احسانات ہے اور محبت کے اسباب پر غور کرے تو محبت طبعی ہو جائے گی. अब जैसे अल्लाह, तो अब अल्लाह की नेमतों को सोचे कि देखो अल्लाह ने मुझे आंखें दी और मैं आज देख रहे, अल्लाह आंखें ले ले तो कौन है पूछने वाला, मैं कैसे ला सकता हूं। मुझे कान दिए, मुझे जबान दी, मुझे हाथ दिए, मेरी जबान चलती है, मैं खाना खा रहा हूं, हजर हूं, ये सारा सब सोचेंगे तो जाहिर बात है उससे एक अल्लाह ताला से एक मोहब्बत की तबीयत पैदा होगी। तो अब उस मोहब्बत वो तबीयत पहुंचने के लिए जरिया बना अकली, यानी गौर व फिक्र। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम से भी, तो अब गौर व फिक्र नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं तो वो मोहब्बत तबी नहीं आ सकती। तो मोहब्बत तबी की दो किस्में बताएंगे, समझे, और उसमें से एक जो बगैर दलील के आ जाए, दूसरी वो जो सोचकर और दलील के साथ में आए, जैसे नेमतों को सोचना, बोले बात है उस जात से मोहब्बत जिसने हमें सब कुछ दिया, उसी को सुगरा और कुबरा कहते हैं, मोहब्बत सुगरा और मोहब्बत कुबरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मोहब्बत के चारों असबाब मौजूद हैं। अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर चारों असबाब मौजूद हैं। चुनाचे नशरुद्दीन में हजरत थानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मोहब्बत के चार असबाब होते हैं। जैसे वहां पर बताया था ना, अल्लाह तक पहुंचने के लिए असबाब थे ना पांच, ऐसे ही मोहब्बत के चार असबाब होते हैं। अगर किसी से मोहब्बत होती है तो उन्हीं असबाब में से किसी सबब के नतीजे में मोहब्बत होती है। किसी से मोहब्बत होगी तो उसका कोई ना कोई जरिया होगा। तो अब जब लोगों से किसी से मोहब्बत हो तो या तो उसके जमाल की वजह से मोहब्बत होती है कि खूबसूरत है, किसी से मोहब्बत खूबसूरती की वजह से होती है। दूसरा ये कि उसके कमाल की वजह से मोहब्बत होती है कि उसके अंदर कुछ कमाल है, इल्म का कमाल है, कोई हुनर का कमाल है, जबान का कमाल है, कोई ना कोई इसके अंदर कोई डिग्री है, या उसके कमाल की वजह से मोहब्बत होती है, खूबसूरती कम होती लेकिन कमाल ज्यादा है। तीसरा या तो उसके नवाल की वजह से मोहब्बत होती, नवाल यानी सखावत, उसका हाथ खुला है, जूद और सखावत की वजह से मोहब्बत होती। अब कोई एक आदमी सखी होता है, हर एक को देता है, किसी का दिल नहीं दुखाता तो उससे भी इंसान मोहब्बत करता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चौथा ये कि उसके माल की वजह से उससे मोहब्बत होती है, माल की वजह से। तो नबी अलैहिस्सलाम की जाते अकदस में चारों असबाब मौजूद है और इस दर्जे में मौजूद है कि कायनात में किसी के अंदर भी इस दर्जे में मौजूद नहीं हो सकते कि जमाल भी हो, कमाल भी हो, नवाल भी हो और साथ में माल भी हो। आपका जमाल तो ऐसा था, आपका जमाल कैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमा रही है कि जुलेखा की सहेलियों ने तो, जुलेखा की सहेलियों ने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काट डाले थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो पता होगा और वहां जुलेखा का नाम आता है, जो मिस्र का जो बादशाह था उसकी बीवी थी तो उसका नाम था जुलेखा। तो जुलेखा की यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने वो खरीदा था, तो जुलेखा की सहेलियों ने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काट डाले थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवाई जहां आरा देख लिया होता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुस्न देख लिया होता तो हाथ के बजाय अपने सीने चीर डालती। वहां तो हाथ कटा था, यहां तो सीना चीर जाता, ऐसा खूबसूरत था हमारे नबी सल्लम का। तो फरमाया देखो, तो अपने सीने चीर डालती, इस दर्जे का आपका जमाल था, इस दर्जा आपका जमाल था, आपका कमाल इस दर्जे का था कि इसका कायनात में किसी भी मखलूक के लिए कमाल का वो दर्जा मकसूद हो ही नहीं सकता। ये तो जमाल था, और आप कमाल कैसा था, कमाल ऐसा है कि पूरी मखलूक में उस दर्जे का कोई हो ही नहीं सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। और नवाल यानी जूद और सखावत ऐसी कि पैसे की सखावत, अमवाल की जूद और सखावत, इल्म की सखावत, दीन की सखावत, पूरी उम्मत 1400 साल से आपकी सखावत से सैराब हो रही है। यानी आपने इल्म ऐसा फैलाया, हर एक को दिया, माल दिया, सब कुछ, तो ऐसा है कि आज तक हम उनकी सखावत से फायदा हासिल कर रहे हैं। सैराब हो रही और कयामत तक होती रहेगी। इसलिए जब इंसान इन असबाब में गौर व फिक्र करेगा तो वो मोहब्बत अकली नहीं रहेगी, बल्कि वो मोहब्बत अकली मोहब्बत तबीई में तब्दील होती चली जाएगी। तब्दीली होती चली जाएगी। तो अब समझ में आ गया, वो अकली थी, अब तबीई समझा दे कि वही अकली फिर तबीई में चेंज हो जाती है। हर मुसलमान के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। सच्ची बात यह है कि एक मुसलमान चाहे वो कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, एक मुसलमान चाहे वो कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, फासिक हो, फाजिर हो, गुनाहों के अंदर मुबतला हो, गुंडा हो, आवारा हो, कैसा भी हो, मुसलमान है, लेकिन हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके कल्ब के अंदर इस दर्जे में जागजी होती है, यानी उसके दिल में होती है कि चाहे वो नमाज न पढ़े, रोजे न रखे, फराइज से गाफिल रहे, लेकिन अगर कोई शख्स उसके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा और अपनी जान दे देगा। चुनांचे बाज लोगों ने जान दे दी, मसलन गाजी इल्मुद्दीन अभी कुछ अरसा पहले गुजरा है, उसके सामने एक शख्स ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उसने उसको कत्ल कर दिया। जब उसके खिलाफ मुकदमा चला तो लोगों ने उससे कहा कि तुम एक मर्तबा इतना कह दो कि मैंने कत्ल नहीं किया, एक मर्तबा कह दो। यानी एक आदमी ने दूसरे ने उसके सामने हुजूर के बारे में उसने उसको मार दिया, उसका केस हो गया कि तुमने उसको मारा है, अब तुम्हें अगर केस को खत्म करना तो एक मर्तबा कह दो। क्या कह दो? ये कह दो कि मैंने कत्ल नहीं किया, इतना कह दो या कुछ तावील कर दो। उसने जवाब दिया कि मैं कैसे तावील करूं, सारी जिंदगी में एक ही तो अमल किया, मेरे अमाल नामे में तो सिर्फ यही एक अमल है, कोई अरमल है ही नहीं। बेचारा न नमाजी थी न कुछ थी, कुछ नहीं था, कुछ अमल ही नहीं है। चुनाचे उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको फांसी दे दी गई। बहरहाल लेकिन उसने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। लेकिन ये हालांकि छुड़ाने के लिए तैयार था। लोग भी कह रहे तुम एक मर्तबा कह दो कि हाँ मैंने नहीं किया बस, तो क्यों शक हो जाएगा ना, तो बोले छूट सकता है। लेकिन नहीं कहा, मैं क्यों, मेरे पास कोई अमल तो है ही नहीं, ये एक अमल है, इस अमल को लेकर तो अल्लाह के दरबार में जाऊंगा। देखो मोहब्बत कैसी चीज होती, और अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को देखकर बख्श भी दे, इसके लिए कौन पूछने वाला है। अख्तर शिरानी जो मशहूर शायर है, बहुत आजाद किस्म का शायर था और पीने पिलाने का आदी था। अब समझ गए ना पीने पिलाने का। चूंकि उसने शायरी मकबूल थी, उसकी शायरी मकबूल थी, इसलिए किसी को खातिर में नहीं लाता था। एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ होटल में बैठा हुआ था वो शायर, पीने पिलाने का शुगल चल रहा था, लोग उसको छेड़ते थे और नशे के हालत में उससे मुख्तलिफ लोगों के बारे में सवाल करके उससे बात कहलवाते थे। चुनांचे लोग उससे मुख्तलिफ लोगों के बारे में पूछते रहे कि तुम्हारा फुला के बारे में क्या ख्याल है, उसने जवाब में उस पर कोई फकरा कस दिया, यानी कोई ना कोई कुछ बोल दिया, फुला के बारे में क्या ख्याल है, उसने उस पर कोई भी बात कह दी, कभी किसी सीआईडी सियासी लीडर के बारे में, कभी किसी शायर के बारे में, कभी किसी अदीब के बारे में, इससे सवाल करते रहते, तो हर एक पर कुछ न कुछ गुस्ताखाना अल्फाज बोलता था। उसी दौरान किसी कम वक्त ने उसे सवाल पूछ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब देखो नबी का नाम आ गया, अब एक तरफ तो वो शराब के नशे में हैं और दूसरी तरफ माहौल ऐसा बना हुआ है कि वो हर एक पर फकरे कस रहा है, फकरे यानी कुछ न कुछ बुराई निकाल रहा है। ये सवाल सुनते ही ऐसा मालूम हुआ कि जैसे एकदम से उसको करंट लग गया। उसके हाथ में एक गलास था, वो गलास इस सवाल करने वाले के मुंह पर फेंक मारा। अल्लाह, सवाल मुंह पर उसके मार दिया और कहा, कमबख्त तू मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, गुनेगार तो हूं, एक नबी की मोहब्बत का एक सहारा है तो उस पर भी मुझे कहना चाहता है। उसको सीधा वो ग्लास मार दिया। मैं बहुत गुनेगार सही, बहुत गया गुजरा सही, लेकिन उस जात अकदस के बारे में मेरे लिए कोई कलमा काबिले बर्दाश्त नहीं। अल्लाह, देखो देखो, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है। देखो फरमाया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके बारे में मेरे लिए कोई कलमा काबिल बर्दाश्त नहीं। बहरहाल एक मुसलमान का यह आलम होता है, वो चाहे कितना ही गया गुजरा क्यों न हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में बैठी हुई होती है। ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत अकली नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तबीई है, लेकिन मोहब्बत अकली के नतीजे में पैदा हुई है। इस हदीस में यही मोहब्बत मुराद है। देखा मोहब्बत अकली और मोहब्बत तबी को कितना समझाया, सुभान अल्लाह। जी देखो, मोहब्बत और चीज है, जोश और खरोश और चीज है। फिर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत और चीज है और उसका जोश और खरोश और चीज है। बाज औकात किसी के साथ मोहब्बत का जोश खरोश ज्यादा मालूम होता है, लेकिन हकीकी मोहब्बत दूसरे की ज्यादा होती है। देखो यानी बाज मर्तबा बाज जगह पर मोहब्बत होती है लेकिन जोश खरोश नहीं, और बाज मर्तबा जोश और खरोश भी होता है वो दूसरी जगह पर होते, वहां नहीं होती, वहां मोहब्बत होती है, मोहब्बत के साथ जोश और खरोश है और यहां पर सिंपल होती, तो वो समझाना चाहते हैं। तो फरमाया, किसी के साथ मोहब्बत का जोश और खरोश ज्यादा मालूम होता है, किसी के साथ बिल्कुल मालूम नहीं होता, लेकिन हकीकी मोहब्बत दूसरे की ज्यादा होती है। जैसे औलाद से बाप को मोहब्बत होती है, इस मोहब्बत में जोश और खरोश ज्यादा होता है, जोश और खरोश ज्यादा होता है, जी चाहता है कि उसको प्यार करूं, उसको गोद में लू, उसको चिमटाऊं, उससे बातें करूं। उसके मुकाबले में बाप से जो मोहब्बत होती है, यानी बेटे को बाप से जो मोहब्बत होती है, उसमें जोश और खरोश नहीं होता। तो देखा, बाप को जो बेटे से जो मोहब्बत होती है उसमें जोश और खरोश ज्यादा है, और बेटे को बाप से जो मोहब्बत होती है उसमें जोश और खरोश नहीं होता। क्या बाप को चिमटाने, उसको गोद लेने, उसको प्यार करने का जोश होता है? नहीं। मालूम हुआ कि बाप से जोश और खरोश का वो अंदाज नहीं हो सकता जो बेटे से होता है, लिहाजा बाप के साथ जोश और खरोश तो नहीं लेकिन बाप की मोहब्बत में भी कमी नहीं। देखा, बाप के साथ जोश और खरोश तो नहीं लेकिन बाप की मोहब्बत में भी कमी नहीं, बल्कि बाज औकात माँ बाप से मोहब्बत औलाद की मोहब्बत से ज्यादा होती है। माँ बाप से मोहब्बत यानी माँ बाप जो औलाद से मोहब्बत करता, औलाद की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा होती है। चुनांचे अगर कभी दोनों मोहब्बतों में तआरुज हो जाए तो आदमी माँ बाप को तरजीह देता है। बाद औकात माँ बाप से मोहब्बत औलाद की मोहब्बत से ज्यादा होती है, चुनांचे अगर कभी दोनों मोहब्बतों में तआरुज हो जाए तो आदमी माँ बाप को तरजीह देता है। तो मोहब्बत माँ बाप की ज्यादा है और जोश और खरोश औलाद से ज्यादा है। समझ में आया? यानी अगर कहीं मोहब्बत है तो सीधा वो माँ बाप से मोहब्बत पहले करेगा। तो माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा है, चाहे उसमें जोश और खरोश नहीं, तो मोहब्बत माँ बाप की और जोश और खरोश औलाद से, और माँ बाप को जो औलाद से जोश और खरोश औलाद से ज्यादा है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, अलबत्ता जोश और खरोश की ज्यादती मतलूब नहीं। जैसे औलाद माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती है, ऐसे ही हम सब नबी अलैहिस्सलाम की रूहानी औलाद है, तो हमें भी अपने रूहानी बाप से ज्यादा मोहब्बत है। समझ में आई बात? तो ये हो गई, क्योंकि वो हमारे बाप है, हम उनके औलाद है। तो अब उसमें औलाद को माँ बाप से मोहब्बत करने में जोश खरोश नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज्यादा है, लेकिन मोहब्बत ज्यादा है। तो हम नबी अल इस्लाम से जो मोहब्बत करते हैं उसमें जोश खरोश तो नहीं है, लेकिन हमारी मोहब्बत नबी अल इस्लाम से ज्यादा है, वो हमारे बाप है। और उम्महातुल मोमिनीन हमारी माए है, इसलिए उम्महात कहा है। बहरहाल हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तबीई ही मतलूब है, जो मोहब्बत अक्ली के नतीजे में पैदा होती है। देखो इसको दूसरे अंदाज से समझाया, मोहब्बत बाजे वो होती है जिसमें जोश और खरोश नहीं, और बाद मोहब्बत में जोश और खरोश होता है। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मोहब्बत की है, लेकिन कितनी जोश और खरोश थी कि आप चाहते थे कि मेरे उम्मती को, मेरे आने वाली औलाद को एक जरा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे। तो आपने हर तरीका समझा कर गए कि आप जूता पहनो तो कैसे पहनना, निकालो तो कैसे निकालना, कहीं जाओ तो कैसे जाना, गाड़ी में बैठो तो कैसे बैठा, कौन सी दुआ पढ़ो ताकि तुम परेशान। देखो कितनी मोहब्बत में जोश था कि आपको दर्द था और आप उम्मत को एक एक बात समझा करके, रात में सो तो दरवाजा कैसे बंद करो और लाइट कैसे बंद करना और कपड़ों को और पानी को और जहां कैसे रखना, वो सारा समझा कर दिया। जोश खरोश था। और हमें भी नबी से मोहब्बत है, लेकिन बस हुक्मों पर अमल करते, वो जोश और खरोश नहीं है। अल्लाह पर, ये वो तफसील है जो मैंने हजरत अल्लामा अनवशा कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की इबारत से समझी। वाकया ये है कि शाह साहब ने बहुत बारीक और बहुत ऊंची बात बयान फरमा दी। जी, शाह साहब ने बहुत बारीक बहुत ऊंची बात बयान फरमाई, और मैं समझता हूं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद हजरत शाह साहब की बात से मुआरिज नहीं, यानी कोई तआरुज नहीं, अपोजिट नहीं है, बल्कि शायद दोनों का मकसूद एक ही है। इसलिए कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिसको मोहब्बत अकली फरमा रहे है, उसका हासिल भी यही है कि वो मोहब्बत अकली वो इस्तेदलाल से हासिल होती है। मोहब्बत अकली इस्तेदलाल, दलील से, गौर व फिक्र से हासिल होती है, लेकिन वो मोहब्बत भी दिल ही से होती है। इसलिए कि मोहब्बत का महल दिल ही है। भाई मोहब्बत कहां रहेगी? दिल से मोहब्बत होती है, हाथ और पैर से मोहब्बत नहीं होती। हाथ और पैर का चलना ये तो अलामत मोहब्बत है, क्योंकि जिसके मोहब्बत होगी इंसान उसकी तरफ चलेगा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, उससे मुसाफा करेगा। तो ये मोहब्बत के इजहार के लिए है, वरना हकीकत में जो मोहब्बत होती है वो तो दिल ही में होती, दिल में होती। तो फरमाया देखो, तो मोहब्बत दिल ही से होती है, इसलिए कि मोहब्बत का महल दिल ही है, उसके मोहब्बत के रहने की जगह दिल में। और अकल का महल दिमाग है। अकल कहां होता है? वो दिमाग में होती है। और मोहब्बत कहां होती है? दिल में होती है। समझो जरा, मोहब्बत दिल में होती है और अकल दिमाग में होती है। तो फरमाया वो अकली मोहब्बत, तो अकल कहां होती है? दिमाग में। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो अगरचे अकल के गौर व फिक्र के नतीजे में हासिल हुई, लेकिन है तो वो मोहब्बत, और जब मोहब्बत है तो वो दिल से ही होगी। है तो मोहब्बत, है तो मोहब्बत, और जब मोहब्बत है तो वो दिल से होगी। अकल से तो कोई मोहब्बत होगी नहीं। हाँ, अकल से समझेगा फिर मोहब्बत दिल से करेगा, तो वही तभी होगी। सुभान अल्लाह, क्या समझाया, कितने अंदाज से समझाया। इसलिए दोनों हजरात की बात में फर्क नहीं, البتہ حضرت شاہ صاحب نے اس محبت کی تعبیر ایسی فرمائی جو بات کو اقرب الالفہم کر دیتی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ تو آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت درد اور دل جمعی پیدا ہونے کے لیے، محبت اور درد، محبت درد اور دل جمعی یکسوئی، دل جمعی پیدا ہونے کے لیے مثنوی، معنوی اور دیوان حافظ کے دو دو صفحے کا روزانہ مطالعہ کیا جائے تو نافع ہوگا۔ مثنوی، معنوی، معرفی مثنوی ہوئی معنوی، دیوان حافظ کے دو دو صفحے کا، ایک دیوان حافظ ہے وہ بھی کتاب محبت، تو دو دو صفحے کا روزانہ مطالعہ کیا جائے تو نافع ہوگا۔ اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں، وہ پہلا ایک جملہ تھا نا، وہ ہم سے کب سے پہلے پڑھ لیا تھا، یہ اسی کا جواب ہے، سمجھے؟ اب وہ کیا تھا وہ پڑھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ پوری تشریح چل رہی تھی ایک جملے کی، محبت عقلی ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو شریعت پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرے، یہ محبت عقلی تھا۔ اب اسی کو عقلی اور طبیعی کو سمجھایا، اب محبت کیسے لائی جائے، تو فرمایا یہ ہے کہ وہ صفحے یہ کتابوں کو پڑھیں گے تو اس سے محبت آئے گی۔ ابھی جتنے سننے والے ہیں نا سب نے لکھ دیا ہوں گا، اب یہ کتاب لائیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے۔ ہاں یہ مجھے پتا ہے سننے والوں میں اکثر، ہاں بولے چلو ہمیں بھی محبت چاہیے، یعنی کسی سے تعلق کچھ نہیں کرنا، بس محبت کی کتاب کون سی، ارے محبت کی کتاب پڑھنے سے محبت نہیں آنے والی، یاد رکھنا۔ ہاں اس کو تو پڑھنے والوں سے پہلے محنت کرو، جو محنت بتائی جا رہی، اس محنت کرنے کے بعد ایک محبت پیدا ہوگی، اس کے بعد پھر ان کتاب کے پڑھنے سے اور محبت پیدا ہوگی، ورنہ جب محبت کے بغیر ہی اس کتاب کو پڑھیں گے تو محبت سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ ہے تو صحیح ہے لیکن وہ جو مزہ، او ہو کیا بات کہی، تو وہ سمجھ میں نے، ہاں بولے ٹھیک ہے پڑھ لیا۔ اس لیے تھوڑی بہت کریں گے تو پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دراصل میں جس کو کہہ رہے ہیں وہ ان کے مریدین ہیں جو باقاعدہ چل رہے ہیں، اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کہہ رہے کہ تم اس کا مطالعہ کرو۔ لیکن ہمیں تو کیا ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا اور ہم نے بھی لے کر شروع کر دیتا، کیونکہ یہ باتیں بہت جلدی لے لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ محبت اور عشق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کوئی لیکچر دے دیا جائے، محبت اور عشق یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر بیان دے دیا جائے تو آپ کو محبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ عجیب ہے جی۔ تو دیکھو یہ محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ اس کے پر کوئی بیان دیا جائے تو نہیں ہو سکتا اور وہ حاصل ہو جائے، بلکہ یہ تو ایک کیفیت ہے جی۔ محبت تو ایک کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، کہاں دل میں پیدا ہو۔ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے جو اسباب پیچھے بیان کیے گئے، جو بیان ہوئے، ان میں سے ایک سبب تھا اہل اللہ سے تعلق۔ محبت کیا فرمایا، دیکھو محبت اور عشق ایک ایسی چیز ہے جو نہ کسی بیانات سے سمجھی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت پیدا ہونے کے جو اسباب ہے وہ اسباب پچھلے بیان کر دیے، جو پانچ اسباب تھے محبت کے، کثرت ذکر اللہ، ہے نا، محبت کے پانچ اسباب تھے، کون کون سے تھے؟ ایک کثرت ذکر اللہ، اللہ تعالی کے انعامات کو سوچنا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، تیسرا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور طاعت پر مواظبت کرنا، اور حق تعالی سے دعا کرنا۔ تو یہ جو تھا نا محبت پیدا کرنے کے اسباب ہے، یہ کیفیت پیدا ہونے کے جو اسباب پیچھے بیان کیے گئے ان میں سے ایک سبب تھا، ایک سبب کیا تھا؟ اہل اللہ سے تعلق۔ یہ ایک سبب، تو اس پر زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی تھی، باقی دوسری باتیں بہت لمبی ہوئی۔ تو جس طرح اہل اللہ سے تعلق اس کے فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح جو اہل محبت گزر چکے ہیں, جس طرح اسی طرح جو اہل محبت گزر چکے ہیں ان کے حالات, محبت والے جو گزرے ان کے حالات, ان کی سوانح, ان کے ملفوظات, ان کی تعلیمات کا مطالعہ بھی انسان کے اندر محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے. جی محبت تو مولانا معارف المثنوی کے جو مصنف مولانا رومی جو رحمت اللہ علیہ جو ہے, ان کے اندر محبت کا تو ایک خزانہ بھرا ہوا تھا, اس لیے ان کی کتاب پڑھنے سے محبت منتقل ہوتی ہے. تو وہ اسباب بھی ساتھ میں اختیار کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ میں ان کے حالات اور ان کی سوانح, ان کے ملفوظات پڑھ رہے ہو تو محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ دونوں حضرات یعنی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ صاحب مثنوی اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ صاحب دیوان, حافظ یہ دونوں ایسے اہل محبت ہیں, حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب دیوان اور ان کی کتاب مثنوی, یہ دونوں ایسے اہل محبت ہے کہ ان کے سینوں میں محبت کی آگ کی بھٹی سلگ رہی تھی, سلگی ہوئی تھی آگ کی بھٹی, یعنی جس میں بہت تیز آگ ہوتی ہے. ان کا جب کلام پڑھوں گے آئے آئے تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ان کا جب کلام پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. جی معارف مثنوی تو میں نے بھی پہلے پڑھی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد اس میں سے بھی کچھ پڑھیں گے تو کچھ اندر آئے گا تو سمجھا سکیں گے نا کیا محبت ہے, اس کا سمجھانا بھی ایک بات ہے. اب جب محبت ہی نہیں ہوگی تو سمجھا بھی نہیں سکیں گے, سمجھ بھی نہیں سکیں گے. اب دیکھو یہ محبت کیسے پیدا ہوئی ان کے اندر. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے شیخ کون تھے؟ حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی دعا, خواجہ شمس الدین تبریز. یہ محبت کیوں پیدا نہ ہو؟ اس لیے کہ مثنوی جو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بڑے عجیب و غریب چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور یہ الہامی کتاب ہے. اللہ اکبر, الہامی کتاب ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ, بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے مگر امی تھے, سبحان اللہ, مگر امی تھے یعنی کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ اکبر, دیکھو تو صحیح. اور کام کتنا زبردست لیا, اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہیے. تم کیا سمجھتے ہو اگر تمہارے پاس بہت علم ہے تو کیا تم کام کرو گے؟ ارے ہم تو کام لینا چاہتے اسے امی سے بھی دیتے. اور ہماری سب سے پہلی ابتدا نبی علیہ السلام امی تھے اور ان سے کام کتنا بڑا لیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا کام لیا, رحمت للعالمین بن کر آئے. حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ دیکھو امی تھے یعنی پڑھنے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا, ان کے دل پر عجیب و غریب علوم وارد ہوتے تھے اور وہ علوم مجالس میں بیان بھی کر دیتے تھے. اب کیسے آئے ان کے دل میں محبت کیسے آئی؟ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. علم سے مراد یعنی جو نماز روزے کا علم ہو, وہ تو پوچھ پوچھ کر لے لیا. علم کچھ لکھے پڑھے ہو, جیسے ہم لوگ لکھے پڑھتے ہیں, جیسے ہم اسکولوں میں جاتے ہیں یہ کرتے, تو اسکول کا بھی علم ہو یا کم سے کم کچھ لکھنے پڑھنے کا, تو وہ ان کے پاس نہیں تھا. لیکن وہ اپنی ضرورت کے جو عبادت کے مسائل تھے وہ تو پوچھ پوچھ کر چلنا وہ اور چیز ہے. تو ویسے وہ امی تھے, ان کے دل پر عجیب و غریب اللہ سے تعلق ایسا ہو گیا کہ علوم وارد ہوتے اور وہ علوم مجالس میں بیان بھی کر دیتے تھے, لیکن وہ علوم مجلس کی حد تک محدود رہتے تھے. اس لیے کہ مجلس میں بیٹھتے تھے وہ بتاتے تھے, مجلس والے اس کو کیا سمجھ سکتے تھے, کہاں لے کے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ آپ میرے قلب پر ایسے ایسے مضامین القا فرماتے ہیں لیکن میں وہ مضامین یعنی وہ باتیں اس مجلس کے حد تک محدود رہتے ہیں, آگے جاتی نہیں ہیں, میں بالکل بے زبان آدمی ہوں, نہ مجھ سے تصنیف ہوتی ہے, نہ لکھا جاتا ہے, نہ تالیف ہوتی ہے, نہ کوئی شعر مجھ سے کہا جا سکتا ہے, اس لیے یا اللہ مجھے ایک زبان عطا فرما جو میرے ان علوم کو لوگوں تک پہنچا دے. دیکھو انہوں نے دعا کی, کس درد کے ساتھ دعا کی ہوگی, یا اللہ میرے پاس تو زبان نہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہیں نہیں, اس لیے کیا بولے. लेकिन उलूम वारिद हो रहे हैं, अब वो उलूम बोल रहे हैं लेकिन कोई कहां लेके जा रहे। अल्लाह मुझे कोई जबान अता फरमा जो मेरे उलूम को लेके जावे और लोगों तक पहुंचावे, न मेरे पास राइट है कि मैं लिख सकूं, कुछ भी नहीं। चुनांचे इस दुआ के नतीजे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा तबरेज से बैत हो गई। देखो यहां दुआ मांगी, अल्लाह वहां से किसी को भेज दिया। ए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले सारी उम्र को शेर नहीं कहा था। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो शायर नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी उम्र में कभी कोई शेर नहीं कहा, लेकिन शेख की दुआ थी। जब ये शेख की खिदमत में इस्लाह के लिए हाजिर हुए और फिर बैत हो गए, उसी पर उन्होंने बाद में शेर कहा, मौला मौलवी हरगिज नशुद मौला ए रूम, मौलवी हरगिज नशुद मौला ए रूम, ता गुलाम शम्श तबरेजी नशुद, ता गुलाम शम्श तबरेजी नशुद। यानी मौलवी हरगिज मौलाना रूम नहीं बन सकता जब तक कि शम्स तबरेज की गुलामी नहीं इख्तियार करे। यानी आदमी को अल्लाह ताला का ताल्लुक नहीं मिल सकता जब तक कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक पैदा न करे। यह है बहरहाल शेख की गुलामी इख्तियार की, शेख की गुलामी इख्तियार की और उनसे बैत हो गए और उसके नतीजे में हजरत की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की जबान बना दी। वो इस तरह के बैठे बैठे अचानक मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जबान पर अशार जारी हो गए। देखो तो सही, कभी जिंदगी में कोई शेर नहीं कहा, बैठे बैठे अचानक उनकी जबान पर अशार जारी हो गए। हालांकि उससे पहले कभी शेर नहीं कहा था, बस अचानक अशार वारिद होना शुरू हुए, आना शुरू हुए और उन अशार में अजीब व गरीब उलूम मआरिफ किस्से कहानियां असरार और रुमूज बयान होना शुरू हो गए। गोया एक मशीन चल गई, यहां तक के छह दफ्तर अशार से भर गई, छह फाइलें अशार से भर गई। इन अशार में ज्यादातर हिकायत और कहानियां बयान की है, लेकिन हर हिकायत से अजीब व गरीब मानी और मारिफ निकालते हैं। आखिर में एक हिकायत बयान करना शुरू की, एक हिकायत आखिर में बयान करना शुरू की, वो अभी दरमियान में चल रही थी, बस अचानक अशार की आमद बंद हो गई, लॉक लग गया। आगे लिख दिया कि इस हिकायत को मुकम्मल करना मेरे बस में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला ही किसी बंदे को पैदा फरमाएंगे जो इस हिकायत को मुकम्मल करेगा। बस मेरा तो यहां तक लिखा, देखो तो सही, एक बटन दबाया मशीन चालू हो गया और बटन दबाया मशीन बंद, बोले अब आगे काम में नहीं कर सकता। यानी एक बात को भी मुकम्मल नहीं हुई जो लास्ट की थी, फरमाया अधूरी रह गई, अल्लाह ताला किसी और से ले लेंगे। जी बस इंशाल्लाह कल इसके बारे में बताएंगे मसनवी फिर कैसे मुकम्मल हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु मसल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمة.